हाँ नमस्कार। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही कह सकते हैं विचारणीय उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं।
हाँ, जिसका शीर्षक है पूछे कोई मुझसे तो मैं कहूं कि स्वर्ग बस यही है।
बिल्कुल, और ये शीर्षक ही अपने आप में मतलब सोचने पर मजबूर करता है।
सही बात है, ये कि स्वर्ग और नरक कोई अलग जगह नहीं है बल्कि यही है हमारे अंदर,
हमारे नजरिए में, है ना,
हमारे देखने के तरीके में। हाँ बिल्कुल, यही उनका मुख्य विचार है इसमें, और इसीलिए वो अध्यात्म को नकद धर्म भी कहते हैं।
नकद धर्म? अच्छा, ये क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब जिसका फल तुरंत मिलता है यहीं इसी जीवन में, परलोक का इंतजार नहीं, मन की शांति संतोष वो सब अभी मिलता है।
ये तो बड़ी मजेदार बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पूज्य गुरुदेव कैसे समझाते हैं कि अपना नजरिया बदलकर यही स्वर्ग का अनुभव हो सकता है।
हाँ जरूर, उनका सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बिंदु यही है कि स्वर्ग या नरक बाहरी दुनिया में नहीं है, वो हमारी सोच में है।
हमारी सोच में।
उन्होंने एक उदाहरण दिया था फोटोग्राफर का, बड़ा सरल सा है।
हाँ।
कि भाई सामने से फोटो लो तो चेहरा दिखता है, पीछे से लो तो सिर्फ पीठ, चीज वही है, वस्तु वही है,
बस देखने का एंगल बदल गया।
हाँ बिल्कुल, देखने का कोण बदला और तस्वीर बदल गई, जीवन की परिस्थितियां भी वैसी ही रहती हैं कमोबेश, हमारा नजरिया उन्हें सुखद या दुखद बना देता है।
जैसे वो गुलाब वाला उदाहरण भी है, कोई उसे कांटों के बीच फंसा देखे और कोई सोचे कि कांटे कितने भाग्यशाली हैं जो गुलाब के साथ हैं, नजरिया ही तो है।
सही, बिल्कुल सही।
लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं पैसा आ जाए, संपत्ति हो तो सुख मिलेगा।
हाँ ये बहुत बड़ा भ्रम है, पूज्य गुरुदेव इसे साफ तौर पर भ्रम बताते हैं। उन्होंने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया था।
हाँ, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे वो उस समय।
असल में वस्तुओं में नहीं, वो मन की स्थिति है, मनः स्थिति।
ये भी सही है, जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो लगता है अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है, ऊपर वालों को देखते हैं तो ईर्ष्या होने लगती है, शांति आ जाती है।
बिल्कुल, नजरिया ही सब कुछ तय कर रहा है।
तो फिर ये जो नजरिया बदलने की बात है, इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है, मतलब कैसे ये काम करता है एकदम से?
हाँ हाँ, एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार उदाहरण है आगरा के सेठ जी का, गुरुदेव ने बताया था।
अच्छा, क्या हुआ था?
उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने का डर था और इस डर से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई, मतलब नींद उड़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नसें फटने तक का डर हो गया था।
अरे बाप रे, सिर्फ डर से?
हाँ डर से। तो वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कोई दवा वगैरह नहीं दी, बस उनका नजरिया बदल दिया।
कैसे, क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने समझाया कि देखो मान लो 20 लाख का नुकसान हो भी गया छापे में, तो भी तुम्हारे पास 30 लाख तो बचेंगे।
हाँ।
और 30 लाख में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा पूरी जिंदगी।
अच्छा,
तो उन्होंने ध्यान उस पे दिलाया जो बच रहा था, ना कि उस पे जो जा रहा था।
बिल्कुल।
और जैसे ही सेठ जी को ये बात समझ में आई, उनकी चिंता एकदम से गायब हो गई, वो ठीक हो गए।
कमाल है, ये तो सचमुच नकद धर्म वाली बात हो गई, सोच बदली और तुरंत असर।
हाँ, यहाँ दृष्टिकोण बदलना ही इलाज बन गया। एक और उदाहरण है, वो मल्लाह के बेटे वाला।
हाँ वो भी सुना है।
तूफान में नाव के मस्तूल पर चढ़ गया, ऊपर देखा आसमान गरज रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो डर गया।
डर तो मगे गए।
पिता ने नीचे से आवाज दी, ऊपर मत देख, नीचे देख और नीचे आ जा। उसने नीचे देखा, पिता को देखा, नीचे आ गया, डर खत्म।
मतलब जहाँ ध्यान गया वैसा ही भाव मन में आ गया, महत्वाकांक्षाएं, ऊंची उड़ाने, ये कभी कभी डराती हैं।
हाँ जलाती हैं, जबकि संतुलन शांति देता है।
तो ये सकारात्मक नजरिया, ये संतुलन, इसके अलावा और क्या जरूरी है स्वर्ग का अनुभव करने के लिए?
कृतज्ञता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कृतज्ञता मतलब आभार?
हाँ आभार, एहसान मानना। जब हम अपने आसपास के लोगों और चीजों के एहसानों को महसूस करते हैं, माँ का त्याग, पत्नी या पति का साथ और बलिदान, गुरु का मार्गदर्शन,
दोस्तों का साथ, समाज का योगदान।
हाँ और सिर्फ लोगों का ही नहीं, बेजान चीजों का भी, जैसे वो चक्की जो अनाज पीसती है या वो घूरा जो खाद बनकर जमीन को उपजाऊ बनाता है। जब हम इन सब के योगदान को देखते हैं, उनके प्रति एक आभार महसूस करते हैं, तो हर तरफ दिव्यता दिखने लगती है, स्वर्ग जैसा लगने लगता है।
और इसका उल्टा, जब हम सिर्फ दोष देखते हैं, शिकायतें करते रहते हैं,
तो हम नरक का निर्माण करते हैं अपने लिए। चाहे हम कितने भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान क्यों न कर लें, अगर मन में शिकायत है, दोष दृष्टि है, तो शांति नहीं मिलेगी, दूसरों की अच्छाइयों को देखना, उन्हें सराहना, ये बहुत जरूरी है।
ये बात तो है, अक्सर हम कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव वो जो बाहरी स्वर्ग की कल्पना है ना, भोग विलास वाली।
हाँ, जैसे कुछ लोग कल्पना करते हैं कि वहाँ शराब की नहरें होंगी, हूरे होंगी।
हाँ, या सिर्फ नाच गाना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा स्वर्ग उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें स्वीकार्य नहीं है।
तो फिर असली स्वर्ग क्या है उनके अनुसार?
असली स्वर्ग यही है, इसी धरती पर, जो परिश्रम से, सेवा से और उदात्त दृष्टिकोण से बनता है। एक ऊंची सोच, सेवा का भाव, इससे बनता है स्वर्ग।
उन्होंने बुद्ध और कुंती का उदाहरण भी दिया शायद।
हाँ बिल्कुल, कि महान आत्माएं अपने लिए मोक्ष या स्वर्ग नहीं मांगती, वो दूसरों के दुख दूर करने में ही सार्थकता देखती हैं। वो कहती हैं, मुझे सारी विपत्तियां दे दो ताकि दूसरों के कष्ट कम हो। ये है उदात्त दृष्टिकोण।
तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शांति पाने के लिए कुछ गुण भी जरूरी होंगे।
हाँ, उन्होंने 5 गुण बताए हैं, धैर्य, साहस, परिश्रम, संतुलन और मुस्कुराहट।
धैर्य, साहस, परिश्रम, संतुलन और मुस्कुराहट।
हाँ, ये 5 गुण हो तो जीवन की गाड़ी आराम से चलती है। मुश्किलें आती हैं पर इंसान उनसे निपट लेता है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि स्वर्ग या नरक कोई दूसरी दुनिया नहीं, कोई भौगोलिक स्थान नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि वो हमारे मन की एक अवस्था है।
हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी कृतज्ञता, यही सब तय करता है।
एकदम सही।
सही दृष्टिकोण अपनाकर हम इसी जीवन में अपनी इन्हीं परिस्थितियों में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिकता असल में जीवन जीने की कला है, एक दर्शन है।
तो आज जब ये चर्चा समाप्त हो रही है तो शायद हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु है।
हाँ,
कि क्या हम अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी परिस्थितियों को, क्या हम उन्हें कृतज्ञता और सकारात्मकता के चश्मे से देख रहे हैं?
बिल्कुल। क्या हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में, सामान्य जीवन में छिपे हुए उस स्वर्ग को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं? शायद असली खोज बाहर नहीं, अपने अंदर ही करनी है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की है।
इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति है।
ओम शांति है।